लाहौर के बारे में कहा जाता है ना, जिसने
अच्छा
लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, कि
बिरयानी
यार ये कैसी अजीब सी स्टेटमेंट है। स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो एक था अचानक बिरयानी।
मेरा ख्याल है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, वी डोंट नीड दैट मच इन्फॉर्मेशन। अल्लाह के रसूल से जब भी सवाल होता था आपका, अगर आप सवाल को मेजर करें ना जवाब को, वो कभी एक या दो लाइन से ज्यादा नहीं होता।
यार आपका फार्मेसी का बैकग्राउंड है, माशाल्लाह यू एंडेड अप इन द वाईसी मीडिया, हाउ डिड इट हैपन? और वी लॉगिंग का शौक, बहुत से लोग क्वेश्चन भी आपसे पूछते होंगे वी लॉगिंग के बारे में।
अगर आप इस्लाम की रिक्वायरमेंट पूछे ना, इवन एक दाई से भी, तो सबसे पहले उसकी पर्सनल इबादत है, स्पेयर।
ऑल यू हैव इज बेसिकली टाइम। टाइम को किल ना करें बल्कि टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करें।
कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक
अल्हम्दुलिल्लाह
ठाक हैं माशाल्लाह। इतने अरसे बाद आप लाहौर आए हैं, कैसा
सही
लग
बात
रहा
है,
है आपको?
बहुत
और
अच्छा लग रहा है।
क्या फर्क है इस्लामाबाद और लाहौर में?
मैं तो जब भी लाहौर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यही होता है कि लाहौर के बारे में कहा जाता है ना, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। आप लोगों के लिए शायद रेगुलर स्टेटमेंट होगी, लेकिन जो लोग लाहौर से बाहर रहते हैं उनके बारे में, उनको ये चीज़ बड़ी फील होती है कि यार ये कैसी अजीब सी स्टेटमेंट है। मतलब यू हैव टू बी बॉर्न फर्स्ट और यू हैव टू वॉच लाहौर फर्स्ट। ये बड़ा अजीब सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगती है। बहरहाल लाहौर जब भी आते हैं तो एक बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग आती है। आई डोंट नो उस
अच्छा
फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन इट ऑलवेज फील्स गुड व्हेनेवर यू
हाँ
एंटर लाहौर। बल्कि आज भी जब मैं एंटर हो रहा था तो मुजम्मिल मेरे साथ थे, तो मैं उनसे एग्जैक्टली ये सवाल पूछ रहा था कि यार मुजम्मिल जब लाहौर एंटर होते हैं तो एक बड़ी डिफरेंट फीलिंग आती है। यू नो हर शहर की एक डिफरेंट फीलिंग
बिल्कुल
होती है,
बिल्कुल
तो
ऐसे
लाहौर की भी एक बड़ी यूनिक सी फीलिंग है। लेकिन एक अपनाइत कि वो चीज़ ज़रा ज़्यादा है लाहौर में बनिस्बत इस्लामाबाद के। यू नो एक क्लोजनेस और एक अपनाइत लोगों का, यू नो रॉ लोग लाहौर को मैं सोचता हूँ जब भी ना, तो मेरे दिन में आता है कि रॉ।
आपने किसी से रास्ता तो नहीं पूछा?
ओह यस, मैं यही बात करने वाला था कि लाहौर मशहूर है कि रास्ता
बिल्कुल
गलत बताते हैं,
ऐसे
तो आपने
ऐसे
रास्ता तो नहीं
नहीं
पूछा
नहीं
किसी?
गूगल मैप्स का ज़माना है
गूगल
आज।
मैप्स का ज़माना है, ज़बरदस्त। तो आपने खाना कहाँ से खाया? रेस्टोरेंट कोई पसंद आया आपको
खाना
लाहौर
तो
का?
रेस्टोरेंट की जब आज मैंने फूड पैंडा खोला तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें थी और इतनी ज़्यादा नई थी कि समझ नहीं आ रही थी कि यार ये इस्लामाबाद नहीं। इस्लामाबाद में तो हमारे पास चंद गिनी चुनी चीज़ें हैं जिनमें से हम ऑर्डर वगैरह करते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो बल्कि सुभान अल्लाह एक बड़ा अजीब सा नाम था। स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो एक था अचानक बिरयानी। वल्लाह ये मैं बड़ा हैरान हुआ यार, मैंने मुजम्मिल को कहा यार अचानक बिरयानी। ये कैसा नाम है यार? तो कभी कभी
बिल्कुल
लोग ऐसा नाम जानबूझ के रखते हैं ना, ताकि टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ पीपल कि यार ये क्या चीज़ है। मीडिया का दौरा है जनाब।
चले वंडरफुल। तो अली भाई देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता है आपके बारे में कि यार आपका फार्मेसी का बैकग्राउंड है और आप माशाल्लाह यू एंडेड अप इन द वाईसी मीडिया, यू आर टेकिंग कंट्रोल, यू आर यू नो लुकिंग आफ्टर ऑल द मीडिया डिपार्टमेंट, माशाल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू।
अल्हम्दुलिल्लाह
तो
आमीन।
हाउ डिड इट हैपन? और वी लॉगिंग का शौक, बहुत से लोग क्वेश्चन भी आपसे पूछते होंगे वी लॉगिंग के बारे में, तो ये कहाँ से शुरू हुआ, जर्नी आपकी कहाँ से शुरू
पहले
हुई
तो
है?
एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि शायद आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ हेडिंग द मीडिया डिपार्टमेंट और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये मैं कर रहा हूँ। अकेला बंदा ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं करता, हर बंदा जो है उसके साथ एक टीम होती है और एक टीम एफर्ट होती है। तो जो भी मीडिया है वाईसी का, उसमें जो वीडियोज़ हैं उसमें विदाउट माई टीम आई एम नथिंग। मैं अकेला तो सब चीज़ें नहीं कर सकता, तो इसके पीछे एक पूरी टीम है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तीनों में अलग टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मिल के काम कर रहे हैं।
सही बात।
रही बात ये जो स्विच हुआ है फार्मेसी प्रोफेशन से इस तरफ, तो ये अल्लाह अकबर, मैं तो इसको मिरेकल ही समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से, कि अल्लाह ताला जैसे आपको खुद चैनल नहीं करता किसी तरफ, आपसे जब कोई काम लेना
काम लेना
चाहता
होता
है
है
तो
इंसान
उस
कुछ
तरह
और प्लान कर रहा
मैं,
होता
आप कुछ और प्लान करते हो, आपका इवन प्रोफेशन कुछ और है, आपका एक्सपीरियंस कुछ और है, आप हॉस्पिटल्स में काम करते रहे हो, इंडस्ट्री में मैंने काम किया, डिफरेंट सेक्टर्स में
नहीं,
काम
लेकिन वो एक
किया।
होता है ना, एक बंदे का पर्सनल शौक होता है, हॉबी होती है, पिक्चर्स खींचने का कोई शौक था
ये शुरू से
आपको?
था मुझे
अच्छा,
बिल्कुल
फोटोग्राफी
हाँ
शुरू में थी,
हाँ
शुरू से?
फोटोग्राफी शुरू में मतलब मुझे, अभी मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन आई ऑलवेज हैड दिस विजन के फ्रेम्स क्या होते हैं, कंट्रास्ट क्या होता है, ड्रेसिंग डिफरेंट करने का काफ़ी शौक था
सही
यूनिवर्सिटी में,
सही
यू नो
सही
खुद से ड्रेसिंग करना और ट्रेंडी लुक देना और इस तरह की चीज़ें। फिर कभी कोई डिज़ाइनिंग का कोई काम आ गया तो वही पेंट जॉब में खुद ही कुछ कर लिया, सीख लिया, तो इस तरह से कर करके ना, फिर जब मैं इस यूथ क्लब में थोड़ा बहुत वॉलंटियर करना शुरू किया तो ये देखा कि यूथ क्लब में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि यार पोस्टर्स बनाने हैं या मीडिया वर्क करना है तो हम आउटसोर्स कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार यूट्यूब का ज़माना है आजकल, तो लोग कुकिंग सीख रहे हैं, फिर अपने
सही
चैनल्स बना लेते हैं कभी
सही
क्या और क्या, मतलब यू कैन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यूट्यूब।
बिल्कुल
तो
ठीक।
फिर आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, मतलब आई ओनली इंस्टॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, अडोबी फोटोशॉप पे करते हैं हम पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं मिसाल के तौर पे, तो आई इंस्टॉल्ड दैट सॉफ्टवेयर और उसमें एक एक चीज़ को खुद से देखना और उसके बारे में सर्च करना यूट्यूब पे एक एक टूल के बारे में, और फिर पोस्टर बनाना। पहला पोस्टर मुझे याद है मिसाल के तौर पे, वो मुझे 4 घंटे लगे बनाने में, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली उस पर वर्क कर करके। तो ये ग्रेजुअली एक था, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बस काम लेना था तो
इस तरह। अली भाई, इसमें एक मज़े की बात अली भाई की है, दोनों माशाल्लाह अली हैं, इनकी जो बात है ना, आमतौर पर डिज़ाइनर अलग होता है और वीडियो एडिटर अलग होता है, लेकिन माशाल्लाह अली भाई डिज़ाइनर, ये सारे डिज़ाइन भी माशाल्लाह इन्हीं के सुपरविजन में होते हैं, और वीडियो एडिटिंग जितने भी है वो भी माशाल्लाह। तो ये दोनों चीज़ें आपने फिर ये नहीं इकट्ठी?
हाँ, असल में ज़रूरत ही ना, वो कहते हैं ज़रूरत है जात की माँ, तो अकेला बंदा मैं ही था, तो फिर आई हैड टू डू ऑल ऑफ दिस, आई हैड टू मेक पोस्टर्स, आई हैड टू लर्न वीडियो एडिटिंग, एंड आई हैड टू लर्न एवरीथिंग एल्स। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद टीम ऐड होती रही, उनको सिखाना भी और उनसे सीखना भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो प्रोसेस था, इट इवेंचुअली इट हैजंट एक्चुअली एंडेड अप, लेकिन इट्स गोइंग ऑन।
अच्छा, कभी दुआ की थी अली भाई आपने कि अल्लाह ताला कोई काम लें आपसे? कोई डिसाइसिव मोमेंट था इस सारी जर्नी में, प्रोसेस में? और ये सेम मैं आपसे भी पूछूंगा कि एक मोमेंट होता है ना, जैसे मेरे भी लाइफ में एक मोमेंट था, मैंने लिटरली दुआ भी की थी अल्लाह से, कोई ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ में?
बिल्कुल अली भाई, आप बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, जो अल्लाह ताला जिस बंदे से काम लेता है ना दीन का, तो अल्लाह ताला उस बंदे में इखलास ज़रूर देखता है। और मैं ये अभी कल ही एक बंदे से बात कर रहा था यही बात एग्जैक्टली, कि जिस बंदे में इखलास होता है ना, तो अल्लाह ताला उससे फिर काम ले लेता है अपने दीन का। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैं अल्लाह ताला से ये दुआ किया करता था कि जब मैं चेंज हुआ तो मैंने अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ की कि अल्लाह अपने दीन का काम लेना।
क्या बात!
तो ये अल्लाह ताला ने देखें कि दीन का काम ले रहा है, अल्लाह ताला कबूल भी करें।
अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो वाक़ा है ना, उसमें सबसे बड़ी खूबसूरत ये एग्जैक्टली इखलास वाली बात है ना, उसमें वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में ही नहीं, वो जब उन्होंने अपने उस गुनाह से बचे जो उसकी तरफ एक खातून ने उनको दावत दी, तो अल्लाह ताला कहते हैं वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, कि उस औरत ने इरादा किया और हज़रत यूसुफ़ भी उसकी तरफ मिलान यानी उनका हो जाता, लौला अर्रा बुरहान रब्बिह कदालिका लिनसरिफ अनहु सुअ वल फहशा इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, कि इसी तरीके से हम बुराई और फहाशी एक बंदे से दूर करते हैं, यानी हम उसका खुद एक ट्रैक सेट कर देते हैं। और वो क्यों? ही वॉज अ मुखलसीन, इसके दोनों मतलब है, चुना हुआ और इखलास वाला बंदा। सिंसैरिटी इज़ अमेजिंग, सुभान अल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि दैट्स एक्चुअली द बुल्स-आई।
तो आप भी अचानक बिरयानी खाते हैं? आपने भी ट्राई की अचानक बिरयानी? क्योंकि अली भाई ने आज अचानक मुझे तो अभी से वो हंगर पैंग्स हो रहे हैं कि यार ये ट्राई करनी चाहिए लाहौर।
वी शुड डू दिस।
यार मेरे मेरे घर के सामने एक बर्गर वाला है, उसने बड़े मजे मजे के उसे तूफानी बर्गर, तबाही बर्गर, लिटरली उसने ये रखे हुए, तबाही बर्गर, तूफानी बर्गर, और इस तरह के उसने सारे नाम उसने इस तरह के रखे हुए, तो वो लोग बड़े मजे इंजॉय करते हैं। वायरल
अर्तुगरुल वाला भी है ना एक बर्गर,
कौन सा वाला? अर्तुगरुल बर्गर।
ये लोग भी देखें, ये लोग भी समझते हैं कि जो मार्केट में चीज चल रही है ना, उसके नाम से अगर हमने रिलेट किया ना कुछ, तो लोग ज्यादा हमारी मार्केट बढ़ेगी।
देखें ना, अर्तुगरुल में उन्होंने पूरी इस्लामी शरिया दिखाई है, यहाँ तक वो चोर की सजा दिखाई है, इवन वो तलवार से गर्दन उतारते हुए दिखाई है, बट समहाउ जैज टूक अपॉर्चुनिटी और उन्होंने वो मॉडल जो है उसमें जो एक्ट्रेस है उसको मॉडल हायर किया, तो दिस शोज कि उन्हें जो चीज वट एवर सेल्स वो उनके लिए ठीक है। तो मुगीरा भाई, बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि देखें आज के दौर में, और आप भी ये समझते हैं कि मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब के चैनल्स इतने ज़्यादा हैं, इतने दाइज हैं माशाल्लाह जो दीन का काम कर रहे हैं, बहुत कुछ बताते हैं, एक आम बंदा ना सुन सुन के कभी कभी स्ट्रेस में भी आ जाता है कि शायद मेरी लाइफ में कोई कमी है, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या करें, हम कौन सा पाथ फॉलो करें, हम कहाँ से शुरू करें, तो व्हाट इज़ दैट मॉडरेट पाथ, क्या करना चाहिए एक आम आदमी को इस हवाले से?
ब्रो, मेरा तो इस बारे में बड़ी ये राय है कि मेरा ख्याल है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, वी डोंट नीड दैट मच इन्फॉर्मेशन।
अच्छा,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिलीजियस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा, यानी नॉलेज भी हर बंदे के लिए रेलिवेंट नहीं है, ज़ाहिर है स्कॉलर्स के लिए तो रेलिवेंट होती है, लेकिन दीन का जो ओवरऑल टेम्परमेंट है ना, जो मिजाज है, वो बड़ी बेसिक चीज़ों में रहता है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी आपसे सवाल हो, आप सबसे बड़ी बात करें, अल्लाह के रसूल से जब भी सवाल होता था आपका, अगर आप सवाल को मेजर करें ना जवाब को, वो कभी एक या दो लाइन से ज़्यादा नहीं होता था, यानी इमेजिन करें, वैसे तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने जवामेउल कलीम दिए थे, आपकी स्टेटमेंट्स में बहुत जुमानी होते थे, जैसे कि अरबों में कहा जाता है खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, बेहतरीन कलाम वो होता है जो थोड़ा होता है लेकिन उसके मानी बहुत ज़्यादा होते हैं, कम्प्रिहेंसिव होता है। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जो है ना जवाब लंबे नहीं देते थे। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि हमारे जो बड़े आजकल के कॉन्टेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं, शेख मोहम्मद बिन साल अल फौज़ान बड़े मशहूर आलिम दीन है सऊदी अरब के, आप कभी उनके फतावा सुने। इसी तरीके से शेख बिन बाज़ जो हैं, उनसे पहले मरहूम जो मुफ्ती आज़म थे, करंट मुफ्ती आज़म से पहले, उनके भी हमेशा वन लाइन आंसर, यानी कहते कर सकते हैं आप उनके फतावा मजमू, उनका जो फतावा उनकी जो उनकी वेबसाइट भी है, आप उसमें देखें एक या दो लाइन, ये बहुत भी हुआ ना दो या यानी एक पैराग्राफ से ज़्यादा किसी भी मुश्किल से मुश्किल सवाल का आंसर ये होता था। असल में ना दीन बहुत सिंपल है, दीन की आपसे एक इंडिविजुअल से एक लेमैन से रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है, और रिक्वायरमेंट अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसी बात बताएं कि मैं दीन मुझे जन्नत मिल जाए। आपने फरमाया, आपने पाँच नमाज़ों का जिक्र किया, उसने कहा इसके अलावा कुछ है, उन्होंने कहा नहीं अगर तत्व कोई और एक्स्ट्रा नवाफिल ही हैं, उन्होंने कहा फिर सियाम जो है रोज़े के बारे में पूछा, रोज़े के बारे में पूछा और आपने फरमाया कि इसके अलावा फ़र्ज़ी रोज़े, फिर आपने ज़कात के बारे में बात की, तो उसने कहा कि मैं इतना ही करूँगा ला अजीद वाला अनकुस, ना मैं इससे ज़्यादा करूँगा ना इससे कम करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सदक़ा अफलाह, अगर इसने सच बोला तो ये कामयाब।
लेकिन आजकल तो यार मुगीरा हम देखते हैं कि लोग रीजंस मांगते हैं, ठीक है, और अगर आप ये इन दोनों चीज़ों को देखें तो एक कंट्रास्ट नज़र आएगा आपको कि यार एक तरफ हमें टू लाइन वन लाइन आंसर मिल रहा है और वो कहा जा रहा है कि सुनो और अमल करो बस, ठीक है, लेकिन आजकल जो हमारी यूथ का ट्रेंड है वो ये कि हमें उसमें रीजंस चाहिए होते हैं, हिकमत मांगते हैं, तो फिर हाउ डू यू डू।
दूसरा वो एक्टिविज्म इतनी ज़्यादा है ना इंटरनेट पे कि हर बंदा जब तक कुछ करे नहीं उसको चैन नहीं मिलता, लाइक पीपल आस्क कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं दावा में आना चाहता हूँ, तो वो कैसे इस चीज़ को बैलेंस करें।
वही है, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अगर आप इस्लाम की रिक्वायरमेंट पूछे ना इवन एक दाई से भी, तो सबसे पहले उसकी पर्सनल इबादत है, स्फेयर्स। पहला पर्सनल इबादत में से हम में से कई ऐसे बंदे हैं जो कि अक्सरियत ऐसी है जो पर्सनल इबादत में ही फेलियर्स हैं, ठीक है ना। अगली इबादत में तो बात की बात है, देखें दीन के काम करने, बड़े बड़े काम करने, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि छोटी बातों में भी ना, असल में दो तरह की ना, शैतान की तरफ से कुछ ये भी होता है कि शैतान आमतौर पर यह करता है कि इंसान से अगर कोई नेकी उसने छुड़वानी हो ना, तो वो ऐसा करता है कि उसे फर्जी जो अहम चीज़ें होती हैं उनको छोड़ के जो गैर जरूरी चीज़ें उनके ऊपर लगा देते हैं। मेरे अपने बड़े दोस्त, करीबी दोस्त थे, तो वो ना नमाज उनको मैंने आज तक नहीं पढ़ते देखा, लेकिन वो इस बारे में बहुत कंसर्न थे कि यार आपने जो है ना ये नहीं खड़े होकर पानी खा रहे हैं, आपको तो बैठना चाहिए, तो खिलाफ सुन्नत है। मतलब कहने का मतलब है वो भी चीज़ें हैं अल्लाह के रसूल की, लेकिन फ़राइज़ जो होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। तो शैतान कुछ चीज़ों के बाद पीछे आपको लगा देता है और बहुत अहम चीज़ें छोड़ देता है।
फैमिली गैदरिंग्स में होता है ना कि बैठकर रिलीजियस टॉक होती है, किस्से कहानी, और जैसे ही फजर का टाइम होता है दुआएं शुरू हो जाती है, नींद आने लग जाती है।
तो ये तो असल में बेसिक रिक्वायरमेंट। दीन बड़ी सिंपल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी थी। मैं असल में अली भाई मैं आपको बताऊं, ओवरऑल ट्रेंड की बात है हमारे यहाँ, यानी एक जब इंफॉर्मेशन का इतना ज़्यादा फ्लो हो गया ना, और हमें ये सिखाया गया कि आपने तब तक मानना ही नहीं है जब तक आपको यानी ईमान का कॉन्सेप्ट, देखें ईमान का कॉन्सेप्ट तो ये है ना, फेथ, द लीप ऑफ फेथ, आपको एक फेथ करना है, तो वो रिक्वायरमेंट आपसे है नहीं, वो तो आप ऐसे ऐसे ख़त्म करते जा रहे हो इवन। और इसी चीज़ का नाम इल्मुल कलाम था, जिसने बाद में क्या किया कि फेथ को भी लॉजिक के पैरामीटर्स के अंदर आप लेके आएंगे तो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। फिलासफी भी यही कहती है। अब देखें फिलासफी की बहसें हैं, डिस्कशन हैं, फिलासफी के डिस्कशन यानी क्वेश्चन हैं, फिलासफी आंसर नहीं करती, फिलासफी क्वेश्चन करती है। तो आपका माइंड ऐसे सोशल इंजीनियरिंग ऐसी कर दी है आपकी कि अब आपके पास हर चीज़ की रीज़न होगी तो आपने माना।
लेकिन हमारे दीन के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और देखें अल्लाह ताला जब कुरान में चीज़ों के बारे में बताता है, अपनी ज़ात के बारे में बताता है, तो वो सारी लॉजिकल चीज़ें हैं। जब साइंस पे गौर करने की बात होती है तो यू रीच अल्लाह सुब्हान तआला थ्रू हिज साइंस, थ्रू हिज क्रिएशन। और जब आप अल्लाह पर ईमान ले आते हो तो फिर आगे जो चीज़ें बताई जाती हैं, मतलब इट इज़ फ्रॉम द दीन इस्लाम कि यू जस्ट फॉलो इट, ठीक है, क्योंकि आप अल्लाह पर ईमान ले आए और आप उसकी क्रिएशन हो, आपने अपने क्रिएटर को पहचान लिया, तो अब आप ज़रूरी नहीं है कि एक ईच एंड एवरी थिंग आपको बताई जाए। साथ ही साथ यू रियलाइज़ कि अल्लाह ताला ने आपका जो जहन बनाया है, आप सारे इल्म आपके जहन में नहीं समा सकते, ठीक है, आपके जहन की एक लिमिट है, तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं वो सारी अल्लाह ने बता दी।
और वैसे भी इबादत करने से मैं समझता हूँ कि बंदे का ईमान बढ़ता है और उससे उसके डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। शुबहात और शहवात इबादत के साथ ताल्लुक है। बंदा मस्जिद बैठे, नमाज के बाद थोड़ा 15-20 मिनट से बैठा रहे, अज़कार करे, स्पिरिचुअलिटी गेन करे,
लेकिन क्वालिटी ऑफ इबादत अली भाई बड़ी ज़रूरी है। हमें मतलब जो लोग इबादत कर भी रहे होते हैं उनमें से मेजॉरिटी वो है जिनको इबादत में का पता ही नहीं है सही तरीके से, इवन नमाज का तर्जुमा तक नहीं पता, अज़कार जो कर रहे हैं दुआओं के मतलब नहीं पता, तो वो फिर स्पिरिचुअलिटी की उस लेवल तक कैसे पहुंचे।
बल्कि वुजू भी ठीक नहीं कुछ लोग करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है एल्बोज जो है उनकी ड्राई होती हैं, तो वुजू की कितनी अहमियत है।
अच्छा इसमें अली भाई मेरे जहन में एक ना बड़ी ज़बरदस्त यानी ये बात आती है जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब डिफरेंट, असल में डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं, इस पर बड़ी बहस हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स ने भी की है, इमाम ने कई हमने उनकी किताब बल्कि अल्फवाइद बड़ी मशहूर किताब है, और उस फवाइद के अंदर जो पहली बहस जो उन्होंने की है, पहली डिस्कशन उनकी जो है वो इसी टॉपिक पर है, और ख़ास तौर पर आयत नूर जो है ना अल्लाह नूर समावत वल अर्द मथल नूरी ही कमिश्का, उसमें भी इस मिसाल का बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट किया। असल में इमाम ने कईम कहते हैं दो तरह के दिल होते हैं, इन नफ़ी दाली कल दिक्र मन कान लहू कल्बुन, कुरान मजीद नसीहत है उसके लिए जिसके पास दिल है। दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो सलीमुल फितरत है, जैसे ही हक बयान किया जाता है उनको लॉजिक की जरूरत नहीं होती, उनका दिल इतना उसको इम्ब्रेस करता है कि वो इमीडिएटली उसके ऊपर यानी सबमिट कर जाते हैं,
अबू बकर सिद्दीक,
हजरत अबू बकर सिद्दीक हो गया, ये लेवल्स हैं। और दूसरा लेवल क्या है वो इमाम ने कई आयत नूर से इस्तदलाल करते हुए दूसरी आयत को बयान करते हैं, लदिकरा लिमन कान लहु कल्बुन औ अल्का समअ वहुवा शहीद, यानी उसको बहुत गौर करना पड़ता है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। तो असल ईमान का तकाजा और असल मोमिन वही था, अब आप देखें साबिकून अव्वलून गया, ये वो कौन थे, उनको क्यों किस चीज़ का बेनिफिट है करने को, तो बाद में भी बड़े लोग मुसलमान हुए, सहाबा उनका अपना दर्जा है मकाम है, लेकिन इनको प्रेफरेंस इसलिए है कि फौरन सबसे पहले क्या है,
सही बात है,
सबसे पहले ईमान। अच्छा इसकी ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट में जो सबसे पहले कुफर है ना वो उतना ही बड़ा गुना है, जिस तरह ईमान फौरन एक्सेप्ट करना, कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं वला तकूनू अव्वला काफिरिन भी, सबसे पहले इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नेगेटिव। असल में यहूदियों का काम यही था, जो लॉजिक जिनके पास इल्म होता ना वो सबसे पहले क्रिटिकल माइंड होता ना वो कहते हैं कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, आम सादा आदमी होता ना बद्दू वो फौरन एक्सेप्ट कर लेता, उसके जहन में कोई वॉल्स नहीं होती जो बिल्ड की होती है,
सही बात है।
लेकिन वो यहूदी और ईसाई क्या करते थे अहले किताब, वो फौरन सबसे पहले इनकार करते थे, वो पहले इनकार करते थे बाद में उनको कन्विंस करना पड़ता था, एरोगेंस से। असल में पहले कुफर नहीं, पहले आप एक्सेप्ट, तो कलीम सलमे यानी कल्बे सलीम जिस बंदे का है ना ये अल्लाह की देन है, कुछ लोगों को उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके वालदैन की तरबियत होती है जिनकी नहीं होती ओवरऑल
नहीं शेख, लेकिन इससे तो देखे ना कोई कह सकता है मुझे वो कल्ब मिला ही नहीं जो जिस कल्ब की यहाँ पे बात हो रही, फिर तो वो यही कहेंगे जी कि फिर मैं तो
उसके लिए ट्रायल है। देखें किसी के लिए, हमारे लिए इस्लाम को इम्ब्रेस करना आसान था, हमने इस्लाम को मतलब आप में से भी माशाल्लाह आप लोग फैमिलीज़ में आप लोगों ने खुद इस्लाम को यानी चूज़ किया और आपने उसके लिए स्ट्रगल किया, आपने चेंज किया, और आपकी फैमिलीज़ में अभी तक लोग नॉन प्रैक्टिसिंग ज़्यादातर मौजूद हैं। मेरी फैमिली में ऐसी थी कि मैं अगर दीन से बाहर भागने की कोशिश की, मेरे अब्बा अम्मी ने यानी डंडे के जोर पर मुझे दीन पर लगाया। असल में मेरे लिए आसानी थी ये, लेकिन मेरे लिए फितने कोई और हैं, आपके लिए ये वाला फितना था लेकिन आपकी तरफ से,
और मेरे ख्याल के जिसके लिए ट्रायल है उसको सवाब ज़्यादा है,
जैसे कि
स्ट्रगल ज्यादा है, वो स्ट्राइव ज्यादा
है। यहूदी ईसाई जो है उनके लिए दो, यहूदी जो मुसलमान होते हैं अहले किताब होते हैं, तो उनके लिए दो दुगना अजर है ना, एक अजर तो वो है जो कि उन्होंने पहली शरीयत पर ईमान लेके, फिर उसको छोड़ के जो दूसरा अजर जो उसको किया उसके लिए एक अलग।
असल में इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग भी जो है ना ये है कि इंसान चाहे इस्लाम से ताल्लुक उसका हो या किसी भी दीन से ताल्लुक हो, जिस भी शख्स में फितरती तौर पर इखलास होता है और सिंसेरिटी होती है ना टूवर्ड्स रीचिंग द हक, वो शख्स हमेशा हमेशा इस्लाम तक जरूर पहुंचता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है।
एरोगेंस नहीं होना,
एरोगेंस ना हो।
अली भाई वो आपके दीगर अफेयर्स में भी नजर आती है, ये सिर्फ इस्लाम के मामले में नहीं होती। आप देखेंगे कि वो बंदा जो है ना फौरन उसको कन्विंस करना बड़ा आसान होता है, उसको हक समझ आ गई फौरन कबूल करता है।
और इसको एकेडमिक लैंग्वेज में कहेंगे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, यानी अगर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आप शो कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस आपका जस्टिस पर बेस्ड है, तो यू विल रीच द ट्रुथ।
कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ अदियान से गुजरते हुए इस्लाम तक पहुंचते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्ट होते हैं, उनके दिल में वो कजी नहीं होती या वो ईगो नहीं होती कि यार मैंने नहीं माननी बात, ठीक है, वो हक तक पहुंचना चाहिए।
ये बड़ा लोग कहते हैं कि जी फलां बंदा बड़ा इंटेलिजेंट था, अल्लाह ने उसको दीन की तरफ, अगर वो इतना इंटेलिजेंट था तो वो दीन की तरफ क्यों नहीं आया, क्या उसको दीन समझ नहीं आया, दीन अगर इतना आसान है तो, ये बड़ा एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि दीन तो बड़ा यानी आपके कॉल आप कहते हैं जी बहुत आसान है, तो फलां इतने इंटेलिजेंट सुकरात जैसे लोग हो गए, सॉक्रेटिस हो गए, ये लोग क्यों नहीं किए। सीधी सी बात है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का वादा है वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जिस बंदे ने वाकई हमारे मामले में सिंसेरली मेहनत की, अली भाई वाली बात है सिंसेरिटी हुई ना, जिस जो हक को कबूल करता है अल्लाह कहते हैं मेरा वादा लनहदियन्नहुम सुबुलना, इसमें एग्जैजरेशन है, इसमें यानी एम्फेसिस है कि हम ज़रूर बज़रूर उसको गाइड करते हैं, ये अल्लाह का वादा, वरना तो आप मुझे बताएं को टेस्ट ही खत्म हो गया। एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की हक को पहचानने के लिए, वो सिंसेर भी था, उसको हक नहीं पहुँचा तो क़यामत के दिन वो अल्लाह को ये नहीं कह सकता अल्लाह मैंने तो कोशिश की थी,
सही बात,
उसका तो उसके बाद तो एक्सक्यूज आ गया। तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही एक्सक्यूज खत्म करने के लिए, वरना तो अल्लाह को तो पहले भी पता है कि इसका एंड क्या होना है। यानी एंड तो अल्लाह को पहले ही पता है। लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला ने क्यों दुनिया बनाई है, जब अल्लाह को एंड ऑलरेडी पता है। तो अल्लाह को इसलिए पता है क्योंकि अल्लाह इंसाफ है, अल्लाह ने इंसाफ करना अल्लाह पहले भी। इसीलिए वो उलमा कहते हैं कि जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था ना कि वो बच्चे को क्यों उन्होंने कत्ल कर दिया, और वो कहते हैं जी हालांकि तो अभी तो उसने गुनाह किया ही नहीं था। तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह के पास जस्ट राइट है, अल्लाह का इल्म इतना कामिल है कि अगर वो बड़ा होता तो उसने ही करना था। तो अल्लाह के पास एग्जैक्टली राइट है कि वो ये कर सकता है, लेकिन अल्लाह करते नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को भी अपना जो है ना जस्टिस को बावर कराना है, और अल्लाह तो दुनिया में भेजा इसीलिए ताकि वो उस प्रोसेस को गुजरे और अल्लाह की जो तकदीर है उसकी तरफ। वो कहते हैं ना हम तकदीर से निकल के तकदीर की तरफ ही जाते हैं। तो
बस मतलब ये मसला भी अली भाई बड़ा कॉमन है, स्पेशली व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस फर्दर ताकि वो चीज़ समझ में आई जो तकदीर का मसला है, कि अल्लाह ताला को जब एक चीज़ मालूम है और फिर भी वी आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड अल्लाह सुब्हान ताला नोज व्हाट्स गोइंग टू बी द एंड, तो येट वी आर गोइंग थ्रू दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग।
अच्छा मेरे से ये मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा रिसेंटली ओ लेवल में, तो मैं उसे समझाता रहा लेकिन वो बार बार सवाल पूछी जाए। मैंने एंड में उसे आंसर ये किया कि यार आपको मसला क्या है अगर अल्लाह को पहले से पता है, और दैट एक्चुअली हिट हिम कि ये असल में इन लोग को मसला है कि अल्लाह को पहले से कैसे पता है, क्योंकि ये नॉलेज है ना अल्टीमेटली, तो अल्लाह का नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि चूंकि अल्लाह ने लिख दिया है तो दैट्स वाई मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का कामिल नॉलेज है, इनफाइनाइट नॉलेज है, और वो गॉड ही क्या जिसे पहले से नॉलेज ना हो। आई थिंक दैट सॉल्व इट।
और दूसरी बात ये कि अल्लाह की नॉलेज की परफेक्शन इतनी ज़बरदस्त है, मतलब मिसाल के तौर पर बड़ी सिंपल सी बात है, एक बंदा जो है वो अगर डिसऑनेस्ट है अपनी किसी मामले में, तो एक उसको एक राइट मिलता है, एक बॉस के पास राइट है कि वो उसको निकाल दे, ठीक है ना। कोई बंदा ये कह सकता है यार आपने क्यों निकाला, हो सकता है कल कोई अच्छा हो जाए। मतलब कल को अच्छे होने का तो कोई दलील किसी के पास नहीं है ना। मसला ये होता है कि अल्लाह की नॉलेज इतनी परफेक्ट है कि उसका ना करना भी करने के बराबर है। यानी एक बंदे ने अमल नहीं भी किया तो वो ऐसे ही है कि उसने किया, क्योंकि अल्लाह के हाँ तो वो बिल्कुल ऐसी चीज़ है जैसे फिल्म है।
इसमें ये एक छोटा सा चीज़ है कि अल्लाह ताला के इल्म में तमाम चीज़ें होने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला हर बंदे का एक्शन भी कंट्रोल कर रहा है। लोग अपने एक्शंस करते खुद हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात चूँकि अल अलीम है, उसका इल्म मुकम्मल है, इसलिए उसको फ्यूचर के तमाम एक्शंस के बारे में मालूमात है।
लेकिन नहीं कोई कह सकता ना कि फिर मैं दुआ ही क्यों करूं, जबकि सब कुछ रिटन है, अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया है, तो दुआ करने का,
क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कि दुआ तकदीर को बदल देती है।
अच्छा तकदीर भी बदल देती है। दूसरी बात यह भी है कि अल्लाह ताला का इल्म जो है, ये देखें इल्म नॉलेज किसी एक्शन पे यानी इन्फ्लुएंस नहीं करता, जरूरी नहीं।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट,
ये बड़ी एक बड़ी एक बड़ा मसला बड़ा इसकी आमतौर पर मिसाल ऐसे ही होती है कि जैसे कि यानी वो एक टीचर है ना, वो एक स्टूडेंट है, वो जो है ना वो टीचर पहले से एक क्लास में कहता है यार तू तो पक्का फेल है,
ठीक है ना। आपको तो नहीं किसी टीचर ने कभी ये मुझे भी कई बार कहा है, मेरे टीचर कहते थे कि अगर तुम पास हो गए, और आज मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह और मैं अच्छी पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट से आप पूछ लें ऐसी कोई बात नहीं।
तो वो कहता है, एक टीचर कहता है कि यार तू तो पक्का पास है, फेल है। तो वो कहता है, वो फेल हो जाता है, वो कहता है टीचर मैं आपके कहने की वजह से फेल हुआ। वो टीचर कहता है मेरे कहने की वजह से, वो इस पर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि टीचर का एक्सपीरियंस था, उसने अपने तजर्बे की बेस पे कहा कि यार जो बंदा इस तरह के करतूत करता है ना, मेरा तजर्बा पूरी जिंदगी में कि आज तक वो पास नहीं हुआ। अच्छा थोड़ी सी मैं बात अगर कंप्लीट कर लूँ, तो अल्लाह ये तो टीचर, अच्छा टीचर फिर भी गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन अल्लाह की नॉलेज परफेक्ट है। तो अल्लाह ने जब ये कह दिया है तो वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि अल्लाह ने उसको बाउंड किया है, वो उसने करना ही था, अल्लाह को पहले ही पता था।
और कौन सा अल्लाह ने आपको बता दिया कि तुम फेल होने जा रहे हो, तुम मेहनत करो यार।
मैं इसको एक और तरह से भी समझाता हूँ आप दोनों से, मैं बताता हूँ। हाँ। कि देखिए मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास टाइम मशीन है, और वो एक बंदे का कल जाके पूरा दिन देख ले, और वो दिन देख के लिख देता है कि कल ये करेगा। अब कल को जब वो ये करता है तो क्या वो ब्लेम कर सकता है जी कि चूंकि आपने लिखा हुआ था? तो वो ये कहेगा कि भाई मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि आई हैव गॉट द टाइम, मैंने टाइम को क्रिएट किया है, टाइम मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अल्लाह के लिए है ही नहीं, ये तो हम वी आर बाउंड बाय स्पेस मैटर एंड टाइम। खैर तकदीर पे तो बहस बड़ी लंबी,
लेकिन दो चीजें जो है ना इनको डिफरेंशिएट मैं चाहता हूँ कि हम ये भी कर लें कि एक तकदीर अलग चीज़ है और एक अल्लाह ताला का इल्म जो है, ये दोनों में डिफरेंस भी है। देखें कुछ चीज़ें प्री डेस्टिन्ड होती हैं, پری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک مطلب بنیادی وہ چیز ہے.
چار چیزیں لکھی جاتی ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا.
آپ ایسا کریں کہ اللہ کا فیصلہ, اللہ کا قضا ہو رہا ہے, تقدیر اصل میں اس میں چونکہ اندازہ بھی آ رہا تھا, علم بھی شامل ہو جاتا ہے, قضا یعنی تو قدر بھی آ جاتا ہے ویسے, لیکن بہتر ورڈ یہ یوز.
میں نے سنا کہ یہ مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے, کچھ وہ ہوتی ہے جو بدلی نہیں جا سکتی, کچھ وہ ہوتی ہے جو دعا سے بدلی جاتی ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نا وہ جو ہے نا یمح اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ مٹا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتے ہیں. اصل میں سوال یہاں سے پیدا ہوا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے. صحیح حدیث ہے, رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کیا واقعی عمر بڑھتی ہے, کیا واقعی عمل کرنے سے عمر بڑھتی ہے یا اچھا اس میں دو علماء کی آ رہا ہے. کچھ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس مختصر زندگی میں اتنا زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے, وہ ایسے ہی جیسے کہ 100 سال اس نے عمل کر دیا. مثلا کچھ علماء کی کنٹریبیوشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جنریشنز تک چلتی ہیں. اور مال میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے مال میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ مال اس کے لیے مور دین سیٹسفیکٹری ہو جاتا ہے, یعنی ہو جاتا ہے. کچھ علماء کی رائے اور زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ واقعی مال بڑھتا بھی ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا, تقدیر تو پہلے لکھی ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آگے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے امدغا علاقہ, باقاعدہ پوچھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مزغہ بنے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنے, پھر وہ کہتے ہیں اچھا علاقہ بنے, پورے سٹیپس میں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق ہے, فمر رزق, اس کا رزق کتنا لکھوں, اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز لکھواتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں کیسے آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا, اصل میں دو طرح کی تقدیریں. ایک تقدیر وہ ہے جو کہ جو ہے نا اللہ نے لکھ دی ہے اپنے لوہے محفوظ میں, وہ تو اٹل ہے, وہ فائنل چیز ہے. لیکن ایک تقدیر اللہ نے وہ لکھی ہے جو کہ چینج بھی ہو سکتی ہے, وہ فرشتے کے پاس لکھی گئی ہے, وہ جو لکھتا ہے نا اس وقت میں. تو علماء کہتے ہیں یمح اللہ ما یشاء ویثبت میں جو تقدیر کا معاملہ جو اللہ تبدیل کرتے ہیں نا, وہ دعا کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے وہ والی تقدیر یوز کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں جو کہ اللہ نے بنائی. لیکن الٹیمیٹلی اللہ کی پرفیکٹ نالج کے مطابق وہ پتا ہوتا ہے کہ فائنل الٹیمیٹ اس کی زندگی وہی ہوگی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک پورا والا تقدیر کا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو, مطلب میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری ہے, تقدیر کا مسئلہ پوری طرح سمجھ آنا آپ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. جب ہم آپ نے فرمایا, بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے, ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں مجھے غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کس کی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں صحیح سمجھ میں آ گیا, وہ بندہ جھوٹا ہے. یعنی کر ہی نہیں سکتا. اصل میں تقدیر اگر سمجھ, تقدیر اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت کو آپ کنسیپچولائز ایک حد سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا جواب دیتے تھے جو عام بندے کو سمجھ آ جائے. لیکن وہ جواب اگر آپ کہیں گے وہ اس طرح کا جواب تھا کہ وہ تقدیر کی حقیقت بیان کر دے, اللہ کی صفات کی حقیقت بیان کر دے, وہ ایسا نہیں تھا. سامی نے پوچھا نا کہ ہم عمل کیوں کریں, اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتا ہے تمہارے بارے میں کیا لکھا گیا, بات ہی ختم. یعنی یہ جواب نہیں دیا, سمجھایا نہیں مسئلہ. اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتا ہے, نہیں پتا, تو پھر تم عمل کرو بس,
عمل کرو. اچھا نہیں, قرآن کی یہ بھی تو آیا نا کہ رزق اللہ جس کا چاہتا ہے بڑھاتا ہے, جس کا چاہتا ہے کم کرتا ہے. تو یہ کیا ہے بڑھانا اور کم کرنا اگر رزق جو ہے وہ لکھا ہو؟
وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو طرح کے رزق ہیں. ایک وہ ایک تقدیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بڑھا بھی دیتے ہیں, اور ایک وہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ چینج کر دیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ایک تقدیر کا وہ جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے لوہے محفوظ میں.
اور کیا پتا وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا اور اس کا رزق بڑھے گا.
اصل میں دعا بھی, اصل میں یہ سوال پیدا ہوا, سوری میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا رزق کو حاصل کرنے کے لیے فزیکل اسباب بھی ضروری ہیں صرف, یا اسپریچول اسباب بھی ضروری ہیں؟ ایک وقت میں اسپریچول اسباب کا مطلب ہے دعا وغیرہ چیزیں, اور فزیکل اسباب ہے محنت وغیرہ. تو علماء نے یہ وضاحت کی کہ اصل میں امام نے قیم نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا اس میں, دونوں میں کنفارمیٹی بڑی زبردست بیان کی, خاص طور پہ ان کی کتاب دوائے شافی میں. وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی آپ کا جو ہے نا دعا اگر سنسیریٹی کے ساتھ مانگی جائے نا, بہت گہرائی کے ساتھ, اور جو دعا کا حق ہے, ویسے تو دعا کا علماء نے یہ بھی مانا بیان کہ دعا سبب کو شامل ہے, یعنی اس کے لیے محنت ضروری ہے, وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے, بغیر صرف نہ محنت کی دعا مانگنا وہ ایک, وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں. بہرحال امام نے قیم کہتے ہیں بعض اوقات دعا اتنی اہم, اتنی قوت رکھتی ہے کہ دعا بذات خود سبب بن جاتی ہے. कॉज बन जाती है, स्पिरिचुअल कॉज फिजिकल कॉज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और अमली वाक्य होता है, कई दफा बंदा ऐसी परेशानी में होता है वो कहता है अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, और मिराक्युलस चीज हो जाती है उसके साथ।
सही बात,
वो कहते हैं वो दुआ बजाते खुद सबब बन जाती है। तो इसीलिए सबब तो जरूरी है, कॉज एंड इफेक्ट को, क्योंकि अल्लाह ने लॉ बना दिया। लेकिन बाजूकत स्पिरिचुअल कॉज, वैसे तो दोनों होने चाहिए, फिजिकल भी स्पिरिचुअल भी, दुआएं अज़कार अल्लाह से दुआएं ये भी होनी चाहिए, साथ वो भी होनी चाहिए, लेकिन बाजूकत स्पिरिचुअल कॉज ज्यादा भी बन जाता है। तो लेकिन फिजिकल कॉजेज पर टोटली रिलाई करना हमारी शरीयत का गलत है। कोई बंदा कहना कि मैं मेहनत इतनी करूंगा, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मैं ये नहीं हासिल कर सकता।
सेल्फ मेड एक टर्म बोली,
ये सेल्फ मेड, हाँ कहते बिलीव इन योर सेल्फ, मुझे ये स्टेटमेंट सही नहीं लगती। मतलब कहने का मतलब है, वैसे अगर तो पॉजिटिव मानी में लें तो ठीक है, लेकिन बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब ये है कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। मतलब ये हमारी मूवीज के अंदर ये बड़ी आराम से है, यू राइट योर ओन डेस्टिनी, ये मतलब ये है कि यार अल्लाह की तकदीर कुछ भी नहीं है, बस तुम ही हो सब तुम्हारी
मेहर।
होता क्या कि जब इंसान को हासिल नहीं करता, पूरी ज़िंदगी लगा जाता है, हासिल नहीं होता, आखिर में क्या होता है, गिल्ट और यानी डिमोटिवेशन होती है, और बंदे को यानी एंजाइटी और डिप्रेशन, होपलेसनेस होती है।
असल में ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ अली भाई कि ये सारी चीज़ें ना हमारे दीन की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं ऑलरेडी, सिर्फ मैटर जो है ना इस तक पहुँचने का है और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। जो चीज़ें हम बयान कर रहे हैं, बात जो हो रही है, दिस इज़ फ्रॉम द कुरान एंड हदीस, वही से है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, मसाइल हमारे यहाँ तब पैदा होते हैं जब हम इनके बारे में स्टडी नहीं करते।
मैं आपको ऐड करता हूँ, इंटरेस्टिंगली मैंने जब दीन पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया, स्कॉलर्स की भी मदद लेता था, तो क्वेश्चन रेज होते थे फौरन, क्योंकि फिर मुझे समझ आई कि दीन पढ़ने के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। मुझे बल्कि एक मेरे टीचर ने बताया कि वन ऑफ द कंडीशन फॉर स्टडिंग दीन इज पेशेंस।
और खिसर का
वाकई ये, और जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया बढ़ता गया, बहुत से सवाल मेरे खुद ब खुद आंसर होते गए। यही होता है अल्टीमेटली व्हेन यू गो अलोंग द जर्नी, बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाती
हैं। मैं खुद कुरान के बारे में ये समझता था नाउज बिल्ला कि ये कोई ऐसी किताब है कि मैं कभी नहीं समझ सकता इसको, ठीक है, मैं ये मतलब ये हमारे लिए है ही नहीं, आम बंदे के लिए है ही नहीं। वल्लाही जब पढ़ना शुरू की तो पता चला अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं यार, हर बंदा आसानी से इसको समझ सकता है।
वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं कहता हूँ हिला देने वाले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तरक्तु फीकुम थकलैन, दो अहम चीज़ें छोड़ा, इन्नी तारिकुम फीकुम, आपने फरमाया महज्जतन बैदा, सफ़ेद रास्ता, और आपने कहा कि लैलुहा कनहारी, ये ऐसा रास्ता है जिसकी रात उसकी दिन की तरह रोशन है, और आपने फरमाया कि ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, इससे जो हो गया ना वो तबाह। यानी दीन, जो बंदा मुश्किल दीन बनाए ना समझे वो दीन ही नहीं है। दीन इतनी सिंपल चीज़ों का आपको जवाब देता है। देखें दीन के अंदर तो वैसे तो देखें एक ऐसा समुंदर है जिसमें से आप जो है ना वो लायनफद वाली बात है, बहरुन लायनफद, ऐसा समुंदर जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन हर बंदे के लिए एक एकेडमिशियन है, उसके लिए भी एक है, लेकिन असल में एक आम बंदे की मैं बात करूँ जो हमारे व्यूअर्स में से ज़्यादातर लोग हैं, आपके लिए दीन बड़ा सिंपल सा यार, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ लें। मुझे एक बंदे ने, ये कोविड हुआ ना तो बड़ी परेशान हुए लोग, कहते बड़े परेशान, पता नहीं क्या होगा, मौत आ गई, तो एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा यार अगर आप पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हो ना अच्छी, और अगर आप पांच वक्त की नमाज़ करने के बाद दीन के बुनियादी मोटी मोटी चीज़ों को अगर आप फॉलो कर रहे हो और आपका अल्लाह के ऊपर ईमान सही है, अकीदा तौहीद है, आपको भी डरने की जरूरत नहीं, आपका तो खैर ही खैर है, जन्नत ही आपके लिए, यानी इससे ज़्यादा आपसे रिक्वायर्ड ही नहीं।
बिल्कुल ठीक।
और ये उलमा ने बहस की है कि अकीदे की तफासील, एकेडमिक बहसें, और ये अस्मा व सिफात की जो बाज़ोकात कलामी डिस्कशंस और पता नहीं क्या क्या थियोलॉजिकल, आप कभी देखें ये फलसफी जिस तरह बहसें करते हैं गॉड के बारे में, हम समझते हैं हमें समझ नहीं आती, एक पढ़े लिखे आदमी को जिसकी फील्ड होती है,
सही बात,
दीन का हमसे तकाजा ही नहीं है ये वाला।
अच्छा एक ऑफ टॉपिक थोड़ा सा मैं, क्योंकि तकदीर की बात हो रही है, अब अचानक हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट मैं उस पर बात करने लगा, हमारी यूथ का हैप्पीनेस का
कॉन्सेप्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं।
नहीं मैं ये देखता हूँ बहुत डिस्टॉर्टेड है हमारी यूथ का हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट, दे बिलीव के जो भी दिल करता है ना वो करने का नाम हैप्पीनेस है। यानी मिसाल के तौर पे एज लॉन्ग एज टू पीपल आर इन लव एंड दे आर हैविंग अ रिलेशनशिप, एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी so it's allowed, as long as two people of same sex are happy it's allowed. तो ये क्राइटेरिया डिस्टॉर्शन हो गई है। What is happiness for you? How, what makes you happy? How do you see happiness? The concept of happiness?
यार मैं तो बड़ा इसको सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड देखता हूँ कि वो चीज़ें जिनमें अल्लाह ताला खुश है ना, जिसमें अल्लाह ताला की रजा है, अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस तभी मिल सकती है, अदरवाइज जो चीज़ आपको मिलती है वो बहुत वक्ती चस्का होता है सिर्फ, जो कि फेड अवे हो जाता है
एक्सटेसी कह ले उसे,
बिल्कुल वो वक्ती चीज़ है ये हम सब ने एक्सपीरियंस की हुई, आपका तो मुझे नहीं पता लेकिन जिस बैकग्राउंड से पर मैं आ रहे हैं वी हैव एक्सपीरियंस दिस इन आवर जे डेज, ठीक है, कि हम वो जो चीज़ें डिफरेंट हुआ करती थी, हमें वक्ती तौर पर बड़ा मज़ा आ रहा होता था, लेकिन बाद में एक इज़तराबी कैफियत भी होती थी, रेस्टलेसनेस वाली, यू नो, वी डिड फील दैट थिंग मे बी एट नाइट सम टाइम, यू नो, व्हेन वी वर अलोन, कि वो चीज़ यार कि यार मैं व्हाट एम आई डूइंग एक्चुअली इन लाइफ, यू नो, वो फीलिंग होती थी. वक्ती चस्का भी होता था,
आस्किंग फॉर मोर एंड मोर,
मोर एंड मोर एंड नेवर यूज टू एंड. लेकिन रिमेंबर दोज टाइम्स व्हेन सम टाइम यू वुड गो टू मस्जिद एंड यू वुड ऑफर योर सलाह and the feeling of satisfaction you would experience after that, particularly मतलब if you compare those feelings na, those two, Allah Akbar, you can see the difference.
आपकी life में ऐसे consistency कैसे आई है, मतलब struggle नमाज है, नमाज कुछ लोग पढ़ते हैं, दो दिन पढ़ते हैं, तीन दिन पढ़ते हैं, एक दिन पांच पढ़ ली, तीन पढ़ ली, कंसिस्टेंसी नहीं आती.
यार कंसिस्टेंसी के लिए मैं तो ये समझता हूँ कंपनी का होना बहुत जरूरी है. कंपनी मेक्स यू और ब्रेक्स
यू नो, वल्लाह. जिम जाने के लिए आप हमेशा कहते हैं फाइंड अ बॉडी,
फाइंड
या स्टडी बॉडी, वो क्या मतलब होता है कि वो अकेला बंदा जिम ही जा रहा है.
मैं कहता हूँ कोई खराब से खराब बंदा है ना अली भाई, खराब से खराब, उसको आप पांच अच्छे भाइयों की महफिल में डाल दें, आप देखें वो कैसे चेंज होता है, ऐसे ऐसे चेंज होता है, और साथ ही कंसिस्टेंसी भी आएगी उसकी. अपने से ज़्यादा इल्म वाले लोगों में बैठना शुरू कर दो, बस देखो आपको, आप वो लोग बन जाओगे, बल्कि आप वो इंडिविजुअल बन जाओगे जो कल लोगों के लिए हिदायत का सबब बनेंगे. तो आप मतलब एक उस लेवल पर पहुँच जाओगे. हाँ
अच्छा अली भाई मैं यहाँ पर एक बात करूँ, ये बड़ी पिछले दिनों मेरे साथ हुई है. असल में ना लोगों की ये आइडिया बहुत ये है कि, और ये हमारे इस्लामिस्ट में भी है ये, और मैं बताता हूँ हुआ क्या. मैंने एक हदीस पिछले दिन अपने पेज पे शेयर की फेसबुक पेज में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस्तजाबु लिअहदिकुम, एक बंदे की दुआ कबूल होती रहती है यहाँ तक कि वो ये कह देता है कि अल्लाह ने तुम्हें, वो दुआ छोड़ देता है और दुआ छोड़ के ये कहता है कि अल्लाह ताला ने तो मेरी दावत फलम युस्तजब ली, मैंने दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई. तो वो सिर्फ उस कहने पे उसकी दुआ कबूल नहीं होती, यानी वो बिल्कुल, यानी इन अदर वर्ड्स के उसकी दुआ कबूल होने वाली होती है, तो वो जो ना कह देता है कि यार मैं गिव अप कर देता है. तो उस हदीस से ये पता चला कि गिव अप नहीं करना चाहिए दुआ में. अच्छा मज़े की बात ये हुई कि अब मैंने ये पोस्ट कर दी उसमें मैंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि कभी दुआ के बारे में होपलेस ना हो, अल्लाह से दुआ मांगें. अली भाई आप यकीन करें मुझे इतने पर्सनल मैसेजेस आना शुरू हो गए, और कॉमन मैसेजेस क्या थे, वही रिलेशनशिप्स के, कि जी आई एम अ प्रैक्टिसिंग ब्रदर और सिस्टर और फ्लाम बंदे से आई एम प्रेइंग लाइक फॉर 5 years एंड और मतलब मैंने कभी अपनी कोई उसके साथ नहीं, आई नेवर टोल्ड हिम अबाउट इट. और मज़े की बात ही हुई कि एक ने तो ये सवाल किया कि एक सिस्टर ने ये सवाल किया कि यानी उसकी तो यानी शादी भी हो गई है, अब आपकी हदीस जो है यानी क्या मुझे अभी भी इसके बारे में दुआ करते रहनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपको मतलब अल्लाह की शान और अल्लाह की उसमें क्या कमी है, अल्लाह ताला तो तकदीर बदल सकते हैं, यानी वो अल्लाह के यानी इन सर्कमस्टांसिस तो कुछ भी नहीं है ना अल्लाह के पास. तो मैं ये दुआ करती रहूँ या छोड़ दूँ, मैं तो बड़ी देर से दुआ कर रही हूँ उसकी शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए. अच्छा मैंने उसका मैंने उसको जो जवाब ये दिया, और बल्कि एक बंदे को दिया, बाकी बड़े लोगों ने पूछा, मैं जवाब नहीं दे सका, लेकिन मैं समझता हूँ असल में ये दुआ के साथ एक फीलिंग ऑफ तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, और वो फीलिंग ऑफ तवक्कुल ये है कि मेरी जो खुशी है ना, मतलब मैं ये अल्लाह पे तवक्कुल रखूँ कि अल्लाह मुझे खुश कर सकते हैं. मतलब हमारे यहाँ ना हमारे बैक ऑफ द माइंड ये है कि ये चीज़ मुझे खुश कर सकती है, और फिर हम अल्लाह से इसी में इतना इंसिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, ये बिलीव करते हुए कि शायद मुझे खुशी इससे ही मिलनी है.
अल्लाह के फैसलों पर यकीन,
अल्लाह की यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि यानी जैसे सॉरी दुआ इस्तिखारा है, दुआ इस्तिखारा में क्या सिखाया हमें, एंड में कहा कि अल्लाह ताला अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं है तो मुझसे दूर कर दे, फसरिफ अन्नी वसरिफनी अनहु वक्दुर लिल खैर हैफुकान, फिर आखिर में क्या, थुम्मा रद्दनी भी, अल्लाह मुझे फिर इस पर राजी भी कर दे, यानी मैं खुश भी हो सकता हूँ, अल्लाह मुझे खुश भी कर सकता है. तो यानी वो ये बंदा समझता है ये आमतौर पे इस तरह की रिलेशनशिप. मैंने कहा आप क्यों ये समझती हैं या समझते हैं कि इसको हासिल ना किया तो मैं ज़िंदगी खुश नहीं हूँ, अल्लाह आपको इससे बेहतर नहीं दे सकता, क्या उसकी शान में नहीं, यानी उसकी शान में कमी है क्या, आप यानी अपने बंदों के लिए क्या उसके पास औरतों की कमी है, मैं कहता हूँ, या अपनी बंदियों के लिए उसके पास नेक मर्दों की कमी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको इससे बहुत बेहतर. तो ये फीलिंग जो है ना कि मैं फिक्सेटेड हूँ, इसीलिए इमाम ने कही है, मैं तो इसको शिर्क का है ना कि इतनी फिक्सेशन है ना कि मैं समझ लूँ कि मैं तो इसके इससे आगे जा ही नहीं सकता, ये शिर्क फिल मोहब्बा है. तो वी नीड टू रियलाइज कि जिस तरह, इसीलिए अल्लाह ताला इस बात को, अल्लाह के रसूल ने इस बात को पसंद नहीं किया कि आप एक चीज़ पे इतने दुनियावी चीज़ पे इतने कंसिस्टेंट हो जाएं कि बस इसके ऑब्सेस्ड हो जाए, नहीं, आप ठीक है मांगे अल्लाह से, लेकिन ऐसा मांगे, और इसमें ये भी कंडीशन होती है ऑब्वियसली, इससे करने से अगले की अगर खराब होती हो, फैमिली भी खराब हो रही है, आप उसके बारे में दुआएं कर रहे हैं और आप ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह उसकी फैमिली तबाह होकर मेरे साथ हो जाए, तो ये भी नेगेटिव है। लेकिन बहरहाल असल पॉइंट इसमें वो ये है कि इस बात पर बिलीव करें अल्लाह मुझे कहीं और भी दे सकता है, इसीलिए अल्लाह पर राजी हूँ, ये भी जरूरी है साथ। तो अल्लाह से मांगने का मकसद सिर्फ मतलब यही है कि अल्लाह से मांगें और अल्लाह से कहें, इसीलिए अच्छी दुआ अल्लाह के रसूल ने ये सिखाई है, अल्लाह ताला जो मेरे लिए बेहतर है वो करे, ये नहीं कि मुझे यही दे।
इवन जो दुआ इस्तखारा का आपने जिक्र किया, यार मैं तो इतना हैरान होता हूँ ना, ये दुआ इस्तखारा की जो दुआ है ना, मैं कल परसों वाइफ से भी डिस्कस कर रहा था, यार दिस इज एन अमेजिंग दुआ यार,
हमारे दिल को
यार कमाल,
मतलब ट्रेजर्स हैं प्रॉफिट की दुआएं, आप निकाल कर देखें, गोल्ड है, ज्वेल्स हैं। अभी मैं इस दुआ पे गौर कर रहा था, रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका हुस्नि इबादतिका, कंसिस्टेंसी की दुआ है कि ऐ मेरे रब मुझे कायम कर दे इस चीज पर, अपने जिक्र पर, और हुसन दे इबादत का, तो ये गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। अच्छा अली, डिजिटल मीडिया के दौर में देखें, फितना इतना ज्यादा है, अजीब गरीब चैनल्स हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, पता नहीं कोई नसरीन या क्या, वट एवर यू नो, पीपल आर लर्निंग स्टूपिड थिंग्स फ्रॉम देम, सो क्या करें बच्चे, अब यूट्यूब से छुटकारा बड़ा मुश्किल है, कोई अल्टरनेटिव, क्योंकि आप मीडिया के बंदे हैं माशाल्लाह, क्या सजेस्ट करेंगे यूथ को, क्या करें, कैसे अपना टाइम स्पेंड करें, पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि बच्चे को क्या दें, अब मोबाइल छीन लें तो उन्हें नहीं समझ आती कि अब वो करें क्या, So, क्या alternative
यार, एक तो बड़ा अनकंट्रोल्ड किस्म का एनवायरनमेंट है हमारे मीडिया का भी ना, खास तौर पे यूट्यूब का मैं देखता हूँ कि जिस बंदे का जो जी चाहता है वो बना के अपलोड कर सकता है और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है, और स्पेशली अगर आप देखें तो ये अर्निंग का जरिया है ना लोगों के लिए,
बल्कि एक वीडियो, सॉरी टू कट यू, एक वीडियो थी हाउ टू ओपन अ डोर विद अ बनाना, 5 million व्यूज उसके, कैन यू इमेजिन, मतलब पीपल आर वाचिंग दिस स्टफ, सो पीपल आर वेस्टिंग सो मच पार्ट ऑफ
यार, असल में यू नो आपको ये फैंसी करती है ना चीज, जब आप ये टाइटल पढ़ते हो कि यार हाँ वाकई वैसे कैसे खुल सकता है बनाना से, आई शुड ओपन एंड चेक इट कि हाउ डिड दे एक्चुअली डू इट, तो आपको ये फैंसी होती है ना कि आप चेक करते हो, तो ये अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है, लोगों के डिफरेंट मकासद, लोगों को इससे गर्ज नहीं है कि हमारे कंटेंट से कौन जो है वो बेनिफिट कर रहा है या कितना नुकसान आ रहा है, लोगों को गर्ज इस चीज़ से है कि हम किस तरह से ऐसा कंटेंट बनाएं जो ज़्यादा हिट हो और हमें पैसे ज़्यादा मिले प्लस फेम ज़्यादा मिले। ये सेलिब्रिटी की रेस आजकल है, मैं आपको सही बताऊँ, ठीक है, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बिकम फेमस, जबकि अगर हम दीन में अपनी बात करें तो फेम इज सच अ डिजीज़, हमारे जितने पायस प्रेडिसेसर्स थे वो भागा करते थे इस चीज़ से कि हमें कोई जाने इस चीज़ से, और आज बिल्कुल एक कंट्रास्ट आप देखेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ कि हम लोग फेम, मतलब लोग गोलियां मार लेते हैं अपने आप को, यार टिकटॉकर्स मर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, वो छतों से छलांग लगाने वाले पार्कर जो हैं वो आपस में गिर जाते हैं, कभी क्या हो जाता है सेल्फीज लेते हुए, क्यों कि हम कोई ऐसा अजूबा काम कर लें किसी तरह से कि हम ना एक रातों रात फेमस हो जाएं। तो इस तरफ हमारी एक तो ये रेस लगी हुई है, अब इसमें हमने अपने बच्चों को कैसे बचाना है, सबसे पहले तो मैं ये रीज़न देता हूँ कि मेरा जो रीज़न था ना इस फील्ड में आने का, वो ये एक रीज़न है टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, ठीक है, टू माई ओन किड्स, कि यार तुम बाबा की वीडियोज देखा
जाए, आपके बच्चे आपकी वीडियोस देखते हैं,
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा देखते हैं और इतना बीच में से हिफ्ज कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को ना, कि जब बाद में बोलते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, यार ये क्या बोल रहे हैं यार। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मेरी एक साइकिलिंग वाली वीडियो है, ठीक है, उसमें साइकिलिंग में कह रहा था मोनाल, एक वो जो ऊपर काफ़ी स्टीप है ना, तो उसमें जब मैं थक गया तो आई वॉज शोइंग आई लाइट डाउन ऑन द रोड जस्ट टू शो के आई एम रैक्ड, मैं इससे ज़्यादा जो है ना आगे नहीं जा सकता। अभी कुछ हफ्ता दो हफ्ते बाद मैं अपने बेटे के साथ साइकिलिंग कर रहा था, तो ऑल दो हम पार्किंग लॉट में थे, तो ही स्टॉप्ड और उसने साइकिल रोकी और मैं हालांकि आगे साइकिलिंग कर रहा था, मैंने उसको देखा तो ही वॉज लाइंग डाउन ऑन द रोड। मैंने कहा बेटा ये आप क्या कर रहे हो, कहते कुछ नहीं कर रहा, उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन आई कुड रिलेट कि यार ही इज ट्राइंग टू कॉपी मी। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन बहरहाल हमें ना अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने होंगे अपनी यूथ के लिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट हों जो हलाल भी हों इंशाल्लाह, और एंटरटेनिंग प्लस एजुकेटिंग भी हों, क्योंकि एजुकेशन की बहुत
आपके माइंड में यूट्यूब के जो स्टोरीज शेयर कर रहे हो प्रॉफिट्स की, सहाबा की, कोई मशहूर,
अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कमी है, कुछ कार्टून्स बहरहाल हैं, वन फॉर किड्स एक चैनल है ऑस्ट्रेलिया से आता है, उसकी सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, लेकिन सही बताऊँ तो कंटेंट बहुत कम है, बहुत कम, और इसमें बहुत काम करेंगे, क्वालिटी भी अच्छी नहीं अनफॉर्चुनेटली. तो मैं समझता हूँ कि लोगों को आना चाहिए आगे, और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं व्लॉगिंग के हवाले से, तो मैं उनको ज़रूर कहता हूँ कि ज़रूर आगे आए इंशाल्लाह, लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि आप ये जो करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं. तो मेक श्योर कि आपका कॉन्टेंट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एजुकेट करें आप लोगों को, ठीक है.
आपका व्लॉग कोई मानी खेज हो,
हाँ बिल्कुल, यही ना कि आप अपनी लाइफ दिखाई जा रहे हैं और ऊट पटांग चीज़ें हो रही हैं, बल्कि गिव देम ए मैसेज, ठीक है, कि अब जैसे अगर मैं व्लॉग्स बनाता हूँ तो आई शो माय लाइफस्टाइल, के नॉट माय पर्सनल लाइफस्टाइल, बल्कि एक इस्लामिक लाइफस्टाइल क्या होता है. फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग पीपल कि इफ़ यू आर अ पर्सन हु ट्राइज टू फियर अल्लाह सुब्हानहु तआला तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है, आपका उठना बैठना कैसे होगा, आपकी एंटरटेनमेंट कैसी होगी, आपकी बातें कैसे होंगी, ठीक है. तो ये चीज़ें आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन माय व्लॉग्स फॉर एग्जांपल. तो इस तरह से ना आप एजुकेट करते हो, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है.
तो यूथ क्लब का कोई है इरादा आपका, यूथ क्लब के थ्रू करने का इंशाल्लाह?
मेरा बिल्कुल इरादा है कि फ्यूचर में ना एक डेडिकेटेड टीम हो जो कार्टून्स बनाए,
जबरदस्त,
ठीक है, इस्लामिक कार्टून्स बनाए और बड़ी जबरदस्त,
बहुत हाई क्वालिटी,
हाँ बिल्कुल डिज्नी लेवल की जो है ना, बल्कि उससे भी अच्छी लेवल की बनाए, और कार्टून्स की अलग हो, स्किट्स की अलग हो.
इसमें ना अली भाई मेरा ख्याल है कि स्टार्ट भी काम हो जाए, मसलन मैं इंडिया को देखता हूँ, ये मोटू पतलू जो है
अब्दुल बारी भी है,
अब्दुल बारी मतलब कोई इतनी बड़ी उसकी क्वालिटी नहीं, मैं कहूँगी डिज्नी लेवल के वो कार्टून्स हैं, जिस तरह यूटोपिया वगैरह जूटोपिया था जिसके ऊपर इतने बताएंगे लाखों रुपए लगे और इतनी डिटेल्स में वर्किंग की गई, लेकिन उसकी व्यूअरशिप देखें आप,
ऑप्शन नहीं है ना लोगों के पास,
बच्चे जो है ना, बच्चे बच्चा मोटू पतलू, यानी मोटू पतलू यार कौन नहीं जाता.
सही बात है.
और वो फिर उसके बाद अपनी वो उसके अंदर उसमें कल्चर भी और वो डाला, तो मतलब उस लेवल का भी मैं कहता हूँ बना लें,
उसका ही बना लें तो बड़ी बात,
बड़ी बात.
और ये लोग ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा स्प्रेड हैं, वाइड स्प्रेड हैं, कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना इसमें, अब्दुल बारी है, मोटू पतलू है, इस तरह के चंद चैनल्स हैं, बस लोग यही देखते हैं, और तो लोगों के पास चॉइस नहीं.
टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, जस्ट टू वाइंड अप, देखें अगर कोई आपसे पूछे कि रूटीन क्या हो डेली की, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि व्हाट शुड बी द रूटीन ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू अचीव सक्सेस इन बोथ वर्ल्ड्स, तो व्हाट्स योर आंसर इन वेरी सिंपल टर्म्स, क्या करे, एक पूरे दिन को कैसे मैनेज करे, स्पोर्ट स्टूडेंट है कोई,
क्या ख्याल है कि एक तो ये कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नमाज सबसे इंपॉर्टेंट है, नमाज अगर अच्छी करे और नमाज की हिफाजत करे, सिर्फ नमाज पढ़े ना, हिफाजत करे, और हिफाजत का मतलब ये है कि उसको
टाइम पे पढ़े,
उसको टाइम टेबल के मुताबिक पढ़े, और सही. और दूसरी चीज़ आई थिंक कि अपने आप को फिजिकली जो है ना एक्टिव रखे, स्पोर्ट्स, आई थिंक स्पोर्ट्स मैं समझता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है आजकल के स्पोर्ट्स या फिजिकल, अगर आपके पास एक्टिविटी नहीं है ना तो आप
गुनाहों से भी बच जाते हैं,
बहुत बचते हैं, बहुत, यानी आपकी डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शंस कंट्रोल में आ जाती हैं. मैं समझता हूँ ये दो चीज़ें बहुत,
मैं तो ये समझता हूँ कि ऑल यू हैव इज़ बेसिकली टाइम, टाइम को किल ना करें बल्कि टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें. अगर आप कोई आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसमें आप देखें कि आपका शौक किस तरफ है, आपका स्किल क्या बन सकता है, उसको आप पॉलिश करें, लर्न करें, और आप ना जहन ये रखें कि आपने एजुकेट करना है. पहली बात जो मुगीरा भाई ने की है वो तो प्राइमरी चीज़ है, उसको आपने नहीं कभी छोड़ना, और अगर कुछ भी नहीं आप कर सकते ना तो जो अगर एक चॉइस है आपके पास तो मैं तो ये कहूँगा कि आप दीन का इल्म हासिल करने लग जाएं,
परफेक्ट,
कुरान समझने लग जाएं, अहदीस पढ़ने लग जाएं, आप देखें आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो. ये अल्लाह का वादा है, ये कोई हमारी बात नहीं, ये अल्लाह के कुरान में वादा है कि अल्लाह ताला उसको वो वाली हयातन तैयबा देते हैं. तो ये तो इसमें तो कोई
बात, एक्सीलेंट. चलें डिनर का भी टाइम है और अचानक बिरयानी, जब से आपने नाम लिया है मेरे तो तब से हंगर पैंग्स जो है वो हो रहे हैं. आई थिंक वी शुड लुक फॉर अचानक बिरयानी, एंड इट वाज रियली ग्रेट टू हैव बोथ ऑफ यू. इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में बात होगी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जज़ाकुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.